Gopi परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तरश श्री श्रीमद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन विविधि फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तरश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी पिछले हफ्ते भगवान श्री राम का आविर्भाव या रामनवमी का उत्सव मनाया गया। भक्ति में उत्सवों का बहुत महत्व है। उत्सव अर्थात ऐसे प्रसंग जहाँ से हमें उत्साह मिले, भक्ति करने का उत्साह। तो उत्सवों का उद्देश्य होता है हृदय में उत्साह को लाना। उत्सवों का उद्देश्य होता है भगवान का गुणगान करना। उत्सवों का उद्देश्य होता है भगवान का स्मरण करना। कम से कम उस दिवस पर तो हम लोग भगवान का स्मरण कर लेते हैं। तो इसीलिए उत्सव ये भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। वैदिक संस्कृति से उत्सवों को अलग नहीं किया जा सकता। संस्कृति शब्द का अर्थ होता है कृति, कृति यानी कार्य करना, और संस्कृति यानी अच्छे कार्य करना, दुष्कृति बुरे कार्य करना। तो इसलिए कृति अर्थात कार्य हमारे ऐसे होने चाहिए जो संस्कार से परिपूर्ण हो, तब वो संस्कृत या संस्कृति कहलाती है। और हमारी वैदिक संस्कृति का अर्थ है हमारे कार्य जो वेदों के अनुसार हों। वेदों के अनुसार, वेदों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले जीवन को संस्कृति कहते हैं, और उत्सव ऐसी वैदिक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक के बाद एक उत्सव आते रहते हैं, ताकि कभी भगवान का स्मरण हृदय से जाए नहीं। तो अभी रामनवमी का उत्सव हुआ है, और अब अगला उत्सव आने वाला है, नरसिंह जयंती का उत्सव, भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव का उत्सव। तो नरसिंह देव का आविर्भाव, आप सबने कथा तो कई बार सुनी है नरसिंह देव की, लेकिन भागवत के शब्दों में, भागवत के श्लोकों में जैसे नरसिंह देव की कथा कही गई है, तो बहुत से उपदेशों को हमें देते हुए वो कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। तो आज से नरसिंह देव की कथा प्रारंभ करेंगे, आज, अगले रविवार, और फिर नरसिंह जयंती के पहले तक प्रयास करेंगे भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य के महत्व को, उद्देश्य को, और उसके श्रवण के फल को आपको समझा सकें। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथाएं सुना रहे थे। उन्होंने कथा सुनाई कि कैसे इंद्र के लिए भगवान ने अवतार लिए, इंद्र की रक्षा के लिए असुरों का वध किया। जिस समय परीक्षित महाराज ने यह सुना, तो उनके मन में एक प्रश्न आया। तो इसीलिए भागवत के सातवें स्कंद के प्रारंभ में पहला ही श्लोक परीक्षित महाराज का प्रश्न है। उन्होंने अभी तक सुन लिया, भगवान ने असुरों को मारा, इंद्र की रक्षा की, अलग अलग समय पर इंद्र की रक्षा के लिए वो आते हैं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो भगवान हर युग में आते हैं, इंद्र जब व्याकुल हो जाते हैं, जब इंद्र चिंता करते हैं, तब भगवान आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि भगवान तो समान है, सबके लिए समान है। अर्थात उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि भगवान समान है या नहीं, उन्होंने कहा भगवान तो सबके लिए समान है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो इंद्र की रक्षा करने के लिए, अभी अभी आपने मुझे बताया कि वो इंद्र की रक्षा करते हैं, असुरों का वध करते हैं, तो ये तो भेद लगता है। भगवान के लिए सब समान होने चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः। मैं तो सबके लिए समान हूं, किसी से द्वेष नहीं करता और किसी को बहुत प्रेम नहीं करता। तो अगर भगवान समान हैं, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं, असुरों को मारते हैं और रक्षा करते हैं देवताओं की, या दूसरे शब्दों में कह देना चाहिए कि किसी को कष्ट देते हैं और किसी को बड़ा आनंद देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी जो भगवान की भक्ति भी नहीं करता, उसको बड़ा आनंद दे देते हैं भगवान, और ऐसा व्यक्ति जो जन्म से भक्त है, धार्मिक है, मंदिर जाता है, सारे कार्य करता है, उसको बड़े कष्ट दे देते हैं भगवान। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं, या केवल जो उनके पास आते हैं उनकी भक्ति करते हैं उनको दे देते हैं, और जो नहीं आते उनको नहीं देते? ये तो पक्षपात है, गलत है। अर्थात भगवान समान नहीं है, और अगर समान है तो फिर असुरों को मारते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? तो बहुत सुंदर प्रश्न उन्होंने किया ये, क्या भगवान डरते हैं या द्वेषी हैं? परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान को डरने की क्या आवश्यकता है? क्या असुरों से उन्हें डर लगता है जो जाके मार देते हैं, या द्वेष करते हैं? भगवान के अंदर न द्वेष होना चाहिए, न भय होना चाहिए, न आसक्ति होनी चाहिए, तो फिर ऐसे लक्षण क्यों? ये प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। और ये प्रश्न आधार हुआ नरसिंह देव की कथा के प्राकट्य का। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए ये प्रश्न सुनकर कि कितना बढ़िया प्रश्न किया है। देखिए, जब बोलने वाला होता है वो तो बोल सकता है बहुत कुछ, लेकिन जब सुनते सुनते जो श्रोता होता है वो जब प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न से पता चलता है कि कितना इसको समझ में आया, कितनी बुद्धि में गई बात। और वो जानकर जो वक्ता है वो प्रसन्न होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए कि परीक्षित महाराज ने इतना समझ लिया कि भगवान समान हैं, उनका कोई वो भेद नहीं करते, लेकिन फिर भी ये क्यों दिख रहा है। वैसे परीक्षित महाराज हम सब के लिए ये प्रश्न कर रहे थे, क्योंकि हम सब के जीवन में ये द्वंद होता है। द्वंद यानी दो चीजें। भगवान के जीवन में द्वंद नहीं है, कोई दो चीजें नहीं है, यानी किसी से प्रेम, किसी से द्वेष, आसक्ति या फिर लोभ, जय विजय, लाभ हानि, ये भगवान के जीवन में कुछ नहीं। क्या लेना देना भगवान को इस जगत के लाभ और हानि से? अगर हम भगवान के लिए कई मंदिर भी बना दें तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? और अगर कोई भी मंदिर नहीं बने तो भगवान दुखी हो जाते हैं? क्या भगवान इंतजार कर रहे हैं, गिन रहे हैं कितने मंदिर बने मेरे धरती पर या कितने नहीं बने? उनको कुछ लेना देना नहीं। ये तो हम अपनी सेवा हेतु भगवान का मंदिर बनाते हैं। भगवान का मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? भगवान का मंदिर बनाने का उद्देश्य है हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, अपनी सेवा अर्पण करते हैं भगवान को, और भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मंदिर बनाते हैं। दूसरा उद्देश्य मंदिर का कि वहां आकर लोग भगवान से जुड़ सकें, इसीलिए प्रभुपाद जी ने विशाल मंदिर निर्माण किए। और इतना ही नहीं, इन्होंने प्रेरणा दी अपने भक्तों को एक बहुत विशाल मंदिर बनाने के लिए, जो अब इस समय बन रहा है मायापुर कलकत्ता के पास। इस्कॉन का सबसे बड़ा, इस्कॉन का नहीं कहना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। तो क्यों इतने विशाल मंदिर बनाए? इसलिए कि लोग आए, भक्ति का ज्ञान लें, भगवान से जुड़ें और भगवान की भक्ति करें। तो इसीलिए बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद जी ने स्थापना किए। तो उद्देश्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं बड़े मंदिर देखकर। भगवान को क्या लेना देना हमारे 10-20 हजार स्क्वायर फीट के मंदिर से, या 30,000, 40,000, 1,00,000 स्क्वायर फीट। भगवान की तो भूमि, सारी भूमि भगवान की है, उनको क्या लेना देना है छोटे मोटे टुकड़ों से। अगर पूरे कारवार को भी एक मंदिर बना दिया जाए, सारा कारवार में जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सब डिमोलिश करके पूरा बड़ा मंदिर बना दें, उस पर पूरे कारवार में केवल एक ही मंदिर हो बड़ा, और कुछ नहीं हो, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, जगह ही ना हो, तो भी भगवान के लिए तो बड़ा छोटा सा है। तो इसीलिए भगवान परे हैं इन सब चीजों के, लेकिन हम द्वंद में हैं। हार या जीतना ये हम लोग चाहते हैं, दुख और सुख ये हमारे लिए है, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब हमारे लिए है। और इसीलिए जब तक हम द्वंद्व में हैं तब तक भगवान को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि हमेशा चिंतन वही रहता है, इस चीज से मेरा क्या लाभ होगा, ये ना करने से क्या हानि होगी। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अगर भक्ति करना चाहते हो तो इन द्वंद्वों से परे हटो, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं कि ये जो द्वंद्व हैं, सुख दुख लाभ हानि इत्यादि, गर्मी ठंडी, ये सब इनसे ऊपर उठो, निर्द्वंद्वो, तब तुम पा सकोगे मुझे। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये जो द्वंद हैं जो इन्होंने प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने, तो उनका बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि इस प्रश्न से सारे जगत को लाभ होगा। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान निर्गुण हैं। निर्गुण अर्थात उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। ये जो हमारे आपके अंदर भौतिक गुण है, एक भौतिक शरीर है हमारा, भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, वो निर्गुण है। निर्गुण अर्थात इन सबसे परे। और क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके अंदर न आसक्ति है न विरक्ति, वो इन सबसे परे हैं, इस भौतिक जगत की आसक्ति विरक्ति इत्यादि से वो दिव्य स्तर पर हैं। और इसीलिए वो किसी से द्वेष नहीं करते और किसी से प्रेम नहीं करते, परे हैं, समान है सबके लिए भगवान। ये तो केवल हमें प्रतीत होता है कि भगवान ने असुरों को मारा, लेकिन क्या देखिए असुर को मारते हैं तो उनको मुक्त नहीं करते? जो भी असुर भगवान के हाथ मारा गया वो मुक्त हो गया। तो ये भगवान की कृपा है या दंड है? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीजें आती हैं कृपा के रूप में, लेकिन हम उन्हें दंड समझ लेते हैं। ये हमारी गलती है। भगवान दंड नहीं देते हैं, भगवान केवल कृपा देते हैं। उदाहरण के लिए पाश्चात्य जगत में एक भक्त थी, एक माता जी, एक महिला भक्त भगवान की भक्ति कर रही थी। कई वर्ष उन्होंने की भगवान की भक्ति, और जब करीब 50 वर्ष की थी तो उनको एक बीमारी हो गई। ऐसी बीमारी कि दोनों पांव खराब हो गए, अपने घर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो नहीं जा सकती थी। इतनी बीमार, इतने पांव खराब, एक ही जगह बैठी रहती थी बस। सुबह उनको कोई बिठा देते थे, बस वहीं बैठी रहनी, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब एक भक्त उनसे मिलने गए तो उन्होंने कोई दोष नहीं दिया भगवान को, निंदा नहीं की भगवान की कि मैंने इतने समय जाप किया भगवान के नाम का, इतने ग्रंथ वितरण किए, इतनी भक्ति की, इतने साल मंदिर गई और देखो भगवान ने क्या दिया, ये तो पक्षपात है, ये तो धोखा है। कोई निंदा नहीं की। हालांकि ये जो भक्त गए थे इनको लग रहा था कि ये तो ठीक नहीं हुआ, इतनी अच्छी भक्त थी ये, बहुत ग्रंथ वितरण करती थी, कीर्तन करती थी, नाम लेती थी, और इनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब उन्होंने उनसे बात की तो वो महिला ने कहा, वो माता जी ने कहा कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, मैं भगवान का नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी, इधर उधर ध्यान, अब भगवान ने ऐसी कृपा की है कि 24 घंटे में उनका नाम ले सकती, क्योंकि और कोई कार्य नहीं कर सकती, सिर्फ 24 घंटे में उनका नाम लेती, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये स्थिति बनाए रखें। देखिए कौन ऐसा सोच सकता है। उन्होंने कहा ये स्थिति बनाए रखे भगवान ताकि मैं रोज उनका नाम ले सकूं। हम में से भी कई लोगों का अनुभव है कि हम दुखों के कारण भगवान के पास आए। अगर जीवन में दुख नहीं होते तो हो सकता है हम लोग, शायद हम में से कई लोग, सब लोग तो नहीं, हम में से कई लोग भगवान के पास नहीं आते। दुखों ने हमें धक्का मारा भगवान की तरफ, और फिर धीरे धीरे जब हम भक्ति में गंभीर हो गए, भक्ति अच्छी करने लगे, आनंद आने लगा, तब जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि योजना थी भगवान की। अगर बीमार नहीं किया होता तो शायद नहीं आते, अगर दुख नहीं दिया होता तो शायद नहीं आते, कष्ट नहीं दिया होता नहीं आते। ये भगवान की कृपा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो निर्गुण हैं, वो तीन गुणों में फंसे नहीं हुए हैं। अलग अलग व्यक्ति अपने अपने कर्म स्वभाव के अनुसार शरीर लेता है परीक्षित, और फिर उस शरीर के अपने अपने गुण होते हैं जिनके अनुसार वो कार्य करता है और दंड भुगतता है। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तीनों गुणों से परे हैं। सत्व गुण में जो होते हैं वो देवताओं के समान होते हैं, रजोगुण के व्यक्ति असुरों के समान होते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति राक्षस के समान होते हैं। लेकिन जो भी कार्य वो करते हैं, ये जान लो परीक्षित कि उनके कार्यों का फल उन्हें मिलता है। भगवान पक्षपात नहीं करते, क्योंकि भगवान इन सब से परे हैं। वे ना आसक्त हैं इस जगत में, ना ही उनको कुछ लेना है इस जगत से। तो ऐसा जब परीक्षित महाराज ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, और उस समय सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं एक इतिहास बताता हूं तुम्हें। तुमने ये पूछ लिया कि भगवान पक्षपात करते हैं या नहीं, तो एक प्रश्न किया था युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस समय राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, आप सब जानते हैं बहुत विशाल यज्ञ हुआ था राजसूय यज्ञ, भगवान स्वयं उपस्थित थे वहां, और भगवान की अग्र पूजा करनी थी, श्री कृष्ण की अग्र पूजा करनी थी, और उसका विरोध किया शिशुपाल ने। शिशुपाल बड़ा ही द्वेषी था, बहुत विरोध करता था भगवान का। तो शिशुपाल ने बहुत विरोध किया कि ये किसकी आप अग्र पूजा कर रहे हो, आप लोगों को बुद्धि नहीं है, अरे यहाँ इतने बड़े बड़े क्षत्रिय बैठे हैं, उनकी पूजा छोड़कर आप ये ग्वाले की पूजा कर रहे हो जो क्षत्रिय भी नहीं है, और तो और अपने ही कुल का घातक है, अपने ही मामा को मार डाला इसने, ऐसे व्यक्ति की आप अग्र पूजा कर रहे हो। बहुत निंदा की, बहुत निंदा, और फिर अंत में भगवान को मारना पड़ा। भगवान ने मार दिया, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, शिशुपाल मर गया। लेकिन सबने देखा, सारे राजा क्षत्रिय मंत्री सैनिक जितने भी उपस्थित थे, सबने देखा कि शिशुपाल के शरीर से तेज निकला और भगवान में जाकर विलीन हो गया, मुक्त हो गया शिशुपाल, उसकी आत्मा निकलकर भगवान में विलीन हो गई सबके सामने। और जब युधिष्ठिर ने यह देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को, और उसने नारद मुनि से प्रश्न किया कि नारद मुनि, ये जो शिशुपाल है, हमने तो सुना है कि जब बोलना भी नहीं सीख रहा था, जब बोलना सीख रहा था, बोल भी नहीं पाता था, तब से कृष्ण की निंदा करता है। देखिए शिशुपाल, निंदा करनी हो तो ऐसे करनी चाहिए, बचपन से जहां बोल भी नहीं पाता तब से कृष्ण की निंदा कर रहा, यानी जब तोतली बोली में बोलता होगा तब भी कृष्ण की निंदा करता था। तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि हमने सुना है ये इतना निंदा करने वाला व्यक्ति, और ऐसा कैसे हुआ कि इसकी मुक्ति हो गई। पूर्व काल में वेण नाम के एक राजा थे जिन्होंने भी निंदा की थी, लेकिन ब्राह्मणों ने तो उन्हें मारकर नरक में भेज दिया, उनको नरक मिला। तो वेण जिसने भगवान की निंदा की उसको नरक मिला, और ये शिशुपाल जो बचपन से निंदा कर रहा है उसको मुक्ति मिल गई। तो उन्होंने नारद मुनि से कहा, हमें तो समझ नहीं आया, आप समझाइए ये क्या है, ये कैसे मुक्ति मिल गई इसको। तब नारद मुनि ने बहुत सुंदर उपदेश युधिष्ठिर महाराज को दिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे कि शिशुपाल को क्यों नहीं नरक मिला। तो उस समय नारद मुनि कहते हैं कि देखो, ये निंदा और प्रशंसा ये उस व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को शरीर मानता है। जब व्यक्ति आकर हमारी निंदा करता है या व्यक्ति आकर हमारी प्रशंसा करता है, अगर हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं तभी तो निंदा स्वीकार करेंगे, तभी प्रशंसा स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं है, उनका तो कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए उनके लिए निंदा और स्तुति या प्रशंसा समान है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि एक भक्त के लक्षण होने चाहिए कि वो समान रहे, स्तुतिर निंदा, स्तुति में निंदा में समान उसको रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान तो इससे परे हैं, तो इसलिए भगवान के विषय में ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। और क्योंकि भगवान निंदा और स्तुति से परे हैं, इसीलिए भले ही शिशुपाल ने निंदा की हो, मानते हैं शिशुपाल ने निंदा की, लेकिन निंदा करते हुए वो सदैव कृष्ण का चिंतन करता था। और भगवान के गुण देखिए, निंदा को छोड़ दिया, चिंतन को ग्रहण कर लिया। अर्थात भगवान ने क्या देखा, नारद मुनि बता रहे थे, युधिष्ठिर महाराज आप देख रहे हो कि वो निंदा कर रहे हैं, और भगवान देख रहे थे कि मेरा भक्त है कितना स्मरण कर रहा है मेरा। सुबह से उठते ही वो निंदा करना शुरू करता था, तो भगवान कहते देखो सुबह से उठ के मेरा स्मरण करना शुरू कर दिया इसने। ये भगवान है, हम भौतिक दृष्टि से देखते, हमने देखा निंदा की, भगवान ने क्या देखा, स्मरण कर रहा है मेरा। तो नारद मुनि कहते हैं कि भले ही उसने द्वेष से किया हो, लेकिन देखिए स्मरण कितना किया। और नारद मुनि कहते युधिष्ठिर महाराज जान लो, कभी कभी भक्ति से तीव्र स्मरण द्वेषी व्यक्ति का होता है। और ये आप समझते हैं ना, आप किसी को प्रेम करें और किसी से द्वेष करें, ज्यादा चिंतन द्वेष करने वाले का होगा। आप हमेशा सोचते रहेंगे कैसे उसको मैं नीचा दिखाऊं, कैसे उसको मैं समाप्त करूं, कैसे उसको मैं बर्बाद करूं। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं जो द्वेष करता है उसका चिंतन ज्यादा होता है, और कृष्ण चिंतन ग्रहण कर लेते हैं, द्वेष नहीं देखते हैं। देखिए कितना अच्छा गुण है भगवान का, व्यक्ति द्वेष कर रहा है, निंदा कर रहा है, शत्रुता कर रहा है, और भगवान क्या देख रहे हैं, स्मरण तो कर रहा है ना मेरा, बस वो बहुत है, कितना अच्छा गुण है। जैसे पद्म पुराण में एक कथा दी जाती है, कार्तिक के महीने में भगवान को दीप दान करने के महत्व पर, तो बताया जाता है कि एक समय पर एक चूहा था, उसको बड़ी भूख लगी थी, तो देखा कि भगवान के पास एक दिया जल रहा है, उसको खुशबू आई घी की, तो चला गया वहां पर। अब वो दिया बस बुझने ही वाला था, कार्तिक का महीना था, वो दिया बुझने वाला था। अब इसको लगा कि खाने की कोई चीज़ है, तो चूहा कूद गया, और जैसे ही कूदा तो जो वाती होती वो थोड़ी ऊपर हो गई, दिया फिर से जल गया बड़ी तेजी से। और दिया जल गया तो चूहा था उसके बाल जलने लगे, उसका शरीर एकदम जल गया, दिया तो उसका शरीर जलने लगा। तो चूहा जोर जोर से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कूदने लगा, बहुत कूदा बहुत कूदा, अंत में मृत्यु हो गई और उसको वैकुंठ मिला। अब बताइए, जो भगवान का दिया खाने के लिए गया था, जल गया, कूद कूद के मरा, उसको वैकुंठ मिला। क्यों? हम देख रहे हैं कि वो खाने गया, भगवान ने क्या देखा कि देखो दिया बुझ रहा था, इसने मेरी सेवा कर दी, दिया जला दिया। हम देख रहे हैं वो जल कर कूद रहा था, भगवान क्या देख रहे थे, कितना अच्छा नृत्य कर रहा है मेरे सामने, और इसीलिए भगवान ने उसको मुक्त कर दिया क्योंकि कूद रहा था। इसीलिए नियम है कि भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों का नियम है भगवान के सामने गाना, भगवान के सामने नृत्य करना। वैसे भी हम सबको बड़ी इच्छा होती है नृत्य करने की, अगर भगवान के सामने नहीं करेंगे तो कहीं और जाके करेंगे, नहीं तो माया नचाएगी आपको, इससे अच्छा है खुद ही भगवान के सामने नाच लें। तो खैर ये बात है कि भगवान क्या देखते हैं। तो भगवान ने, तो नारद मुनि समझा रहे हैं कि तीव्र था स्मरण, और फिर वेण को क्यों नरक मिला, क्यों नहीं शिशुपाल को मिला और वेण को क्यों मिला, तो उसका भी कारण नारद मुनि देते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि वेण ने भगवान का स्मरण नहीं किया जिस तरह से शिशुपाल ने किया। हाँ वेण था, विरोधी था, निंदा करता था, लेकिन स्मरण नहीं करता था भगवान का, लेकिन शिशुपाल 24 घंटे कृष्ण का स्मरण। और फिर वो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ये जान लीजिए कि भगवान को किसी भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, भय से, द्वेष से, प्रेम से, संबंध से, स्नेह से और भक्ति से, इन सब चीजों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता। और वो उदाहरण देते हैं, माने युधिष्ठिर ने कहा हो नहीं सकता, अरे भय से कैसे कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषात चेदादयो नृपः संबंधात वृष्णिया सर्वे संबंधात स्नेहात यूयम वयम प्रभो। तो कहते हैं गोप्या कामात भयात कंसो, आप उदाहरण सुनना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो देखिए गोपियों ने प्रेम से कृष्ण को प्राप्त किया, भयात कंसो, और कंस ने कैसे प्राप्त किया, भय से। गोपियों का प्रेम कैसा था कृष्ण के प्रति, शुद्ध प्रेम, कोई भौतिक कलमश नहीं, और ऐसे प्रेम से उन्होंने प्राप्त किया। और कंस हर समय भयभीत रहता था, जिस दिन घोषणा हो गई थी देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, कंस उस दिन से स्मरण कर रहा था। और जब से उसको पता चला कि कृष्ण बलराम गोकुल में रह रहे हैं और वही वसुदेव के पुत्र हैं, ये भी किसने बताया, नारद मुनि ने। नारद मुनि शांत नहीं रहते हैं, नारद ने जाकर बता दिया उसको, नहीं तो कैसे पता चलता, कंस को कैसे पता चलता कि कृष्ण बलराम ही उनके पुत्र हैं। नारद ने जाकर थोड़ा चाबी लगाते रहते हैं नारद, जैसे जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव लेकर चले गए पहले पुत्र को कंस के पास, लीजिए मार दीजिए। तो कंस ने कहा, अरे तुम कैसे पिता हो, अभी अभी पुत्र का जन्म हुआ है, तुम मारने के लिए ले आए। वसुदेव ने कहा, मैंने वचन दिया था आपको कि सभी पुत्रों को लाकर दूंगा। तो कंस का हृदय पिघल गया, कंस ने कहा, नहीं छोटा सा बच्चा है और इससे मुझे कोई भय नहीं है, आठवें पुत्र को देना, इसको ले जाओ। वसुदेव ने कहा, लेकिन आपने कहा, नहीं ले जाओ कोई बात नहीं, इसको तुम पालो, फिर जब आठवां पुत्र होगा वो दे देना, ठीक है। वसुदेव चले गए, धन्यवाद दिया। नारद मुनि ने, नारद मुनि आए कंस के पास, क्या किया, कंस ने कहा, अरे अच्छा काम किया ना। वो क्या अच्छा काम किया, अरे वो पहले पुत्र को ले आया था, कैसे मारता मैं उसको, उससे तो मुझे कोई भय नहीं है। कंस ने कहा, तुम विष्णु का, नारद मुनि ने कहा, तुम विष्णु को जानते नहीं हो, बहुत मायावी है ये। तो उन्हें कहा, कुछ भी हो मायावी, लेकिन आठवां पुत्र आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। नारद मुनि ने कहा, अच्छा ठीक है। उन्होंने गिनना शुरू किया, गिने, बोले देखो, एक उन्होंने कमल लिया जिसकी आठ पंखुड़ियां थी, वैसे कमल पकड़ा और गिनने लगे, देखो अब ध्यान से देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है ये आठवां हुआ। कंस ने कहा, हाँ ये आठवां हुआ। नारद मुनि ने कहा, अब देखो, उन्होंने यहां से शुरू किया, एक दो तीन चार पाँच छ सात, कौन सा आठवां हुआ। कंस का तो दिमाग घूम गया, हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं, ये विष्णु बड़ा मायावी है, उसने आठवां कहा है लेकिन कहां से आठवां वो नहीं कहा, है ना, तो बड़ा मायावी है। तो नारद मुनि का यही समझाने आया हूं तुम्हें, हो सकता है ये पहला पुत्र ही आठवां हो, विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, विष्णु तो है ही ऐसे, नारद मुनि कह रहे भक्त हैं, लेकिन नारद मुनि, विष्णु का कोई भरोसा मत करो। तो कंस का भी दिमाग घूम गया, कंस ने कहा, ये बात तो एक ही, नारद मुनि मेरे हितैषी हैं, बाकी सब तो देवता बदमाश हैं सारे, नारद मुनि। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया आपने, अभी क्या करना चाहिए, मारो उसको, खत्म करो, करना क्या चाहिए। हाँ ठीक है, चलो, बुलाया वसुदेव को, लिया जेल में डाल दिया, बच्चे को लिया मार दिया पहले। अब वसुदेव को समझ में नहीं आया कि पहले लेकर गया था तो मना कर दिया, अब खुद बुला कर जेल में डालकर मार रहा है बच्चे को। तो नारद मुनि ऐसा करते हैं, नारद मुनि शांत नहीं रहते, दरअसल वो भी उनकी सेवा थी, क्योंकि नारद मुनि सोच रहे थे कि अगर कंस ने वसुदेव की सेवा कर दी, क्योंकि बच्चे को छोड़ दिया, वसुदेव बहुत धन्यवाद देगा तो सेवा हो गई, और वसुदेव भक्त हैं, और अगर भक्त की सेवा कर दी तो कृष्ण मारेंगे नहीं फिर उसे, कंस को तो मारेगा कौन फिर। तो इसीलिए उन्होंने वो सेवा रोकने के लिए कहा ताकि कृष्ण आए। तो खैर ऐसे भय से, तो जैसे पता चला था कंस को, उस दिन से भयभीत रहता था। और नारद मुनि ने आके बताया था गोकुल में नंद महाराज के घर में जो दो रह रहे हैं कृष्ण बलराम, वो वसुदेव के पुत्र हैं, उनके पुत्र नहीं हैं नंद महाराज के, ये तो तुम्हें धोखा देने के लिए बताया गया है। सबको वो बता रहे हैं कि वो मेरे पुत्र हैं, उनके नहीं हैं। गर्ग मुनि गए थे, गर्ग मुनि किसके पुरोहित हैं, वसुदेव के, तो वो गए थे नामकरण के लिए, इसीलिए तुम्हारा काल वही है। तो जिस दिन से उसने सुना उस दिन से भयभीत रहता था। और कैसा भय, वो सोकर आंखें खोलता था, अगर कोई सामने सैनिक दिख जाता तो घबरा जाता था, कृष्ण आ गए कृष्ण आ गए, रात को सपने में कृष्ण आ गए कृष्ण आ गए। अपना चेहरा शीशे में देखता था तो उसको अपनी गर्दन कटी हुई दिखाई देती थी, चिल्लाकर भागता था। बाहर आता तो दो सैनिक सामने से आ रहे, फिर भागता था, कृष्ण बलराम आ गए कृष्ण बलराम आ गए, इतना भय था उसको। तो नारद मुनि कहते हैं जैसे गोपियों ने प्रेम से प्राप्त किया, गोप्यात कामात भयात कंसो, कंस ने भय से प्राप्त कर लिया भगवान को, इसीलिए मृत्यु किससे हुई, भगवान के हाथों हुई। गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषाद चेद आदय नृपः, और द्वेष से ये जो चेदी नरेश, चेदी यानी शिशुपाल और दंत वक्र इत्यादि, तो इन्होंने द्वेष के कारण कृष्ण को प्राप्त किया। इतना द्वेष करते थे कृष्ण से कि हर समय उनका स्मरण था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, भय कर लें द्वेष कर लें भगवान से तो प्राप्त कर लेंगे। हाँ हो सकता है अगर उस तरह का भय हो, कंस की तरह जिसको आंखें खोलने से लेकर आंखें बंद करने तक और आंखें बंद करके आंखें खोलने तक केवल कृष्ण का भय था, अगर ऐसा भय है तो कृष्ण प्राप्त होंगे। और द्वेष शिशुपाल का, बचपन से तोतली बोली में भी कृष्ण की निंदा करता था, ऐसा द्वेष है तो फिर कृष्ण प्राप्त होंगे। और फिर वो आगे कहते हैं नारद मुनि, द्वेषा चेदादय नृपः संबंधात वृष्णि, वृष्णि वंशी अर्थात यदु वंशियों ने संबंध से प्राप्त कर लिया, क्योंकि भगवान उनके वंश में प्रकट हुए तो संबंधी हो गए। स्नेहात यूयम, स्नेहात मतलब आप सब ने, यूयम यानी पांडवों ने उनको स्नेह से प्राप्त किया, आपका बड़ा स्नेह है उनके प्रति। और फिर हमारे जैसे जो साधारण भक्त हैं, नारद मुनि कहते हैं उन्होंने भक्त्याम, भक्ति के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया। तो ये सारे मार्ग हैं जिससे कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। और फिर वो कहने लगे कि तुमने शिशुपाल का वर्णन पूछा तो मैं बताता हूं कि शिशुपाल कौन है। शिशुपाल और दंत वक्र ये भगवान के धाम में, भगवान के धाम में द्वारपाल हैं जय विजय, और चार कुमारों ने इनको श्राप दे दिया इसीलिए वो नीचे आ गए और वो शिशुपाल बने। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अरे भगवान के धाम में भी ऐसा होता है, वहां भी श्राप मिल जाता है, वहां से भी आना पड़ता है, तो फिर युधिष्ठिर महाराज सोचने जाने का लाभ क्या है अगर वहां से भी आना पड़ता। तो उन्होंने प्रश्न कर लिया कि अरे ऐसे कैसे हुआ। तो फिर नारद मुनि ने बताया कि एक समय चार कुमार गए थे, उनको रोक दिया इन द्वारपालों ने, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको नीचे जाकर असुर बन जाओ आप पृथ्वी पर। तो फिर वो असुर बने, और जिस समय वो गिर रहे थे नीचे की ओर आ रहे थे, तो चार कुमारों ने कृपा करके उनसे कहा था कि तुम्हारे तीन जन्म होंगे असुर के रूप में, तुम तीन जन्म तक असुर रहोगे फिर वापस आ जाओगे, चिंता नहीं करना। क्योंकि भगवान ने ये कहा था, जब श्राप दिया गया तो भगवान ने कहा था इनको ज़्यादा समय नहीं, थोड़े समय बाद वापस भेज देना। तो चार कुमारों ने ऐसा कहा। तो उसके बाद जब वे लोगों को ऐसे श्राप मिल गया, तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो ये कथा उन्होंने सुनाई। तो उन्होंने सुनाते सुनाते कह दिया नारद मुनि ने कि हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह देव के रूप में किया, हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने नरसिंह देव के रूप में किया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र बहुत महान भक्त प्रहलाद से बड़ा द्वेष करता था, और रावण का वध रावण कुंभकर्ण का भगवान राम ने किया, और शिशुपाल इत्यादि को तो तुमने देख ही लिया, शिशुपाल दंतवक्र को भगवान ने मुक्त किया। तो जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर महाराज के मन में एक प्रश्न आया, और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता अपने पुत्र से इतना द्वेष करे कि मारने के लिए तैयार हो जाए, और ऐसे मारने के लिए तैयार हो गया तो फिर भगवान को आना पड़ा। तो जरा विस्तार से बताइए, ये बहुत संक्षेप में आपने कह दिया, विस्तार से बताइए। तो फिर उसके बाद नारद मुनि प्रहलाद महाराज की कथा या हिरण्यकश्यपु या नरसिंह देव की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो नरसिंह देव की कथा, वैसे तो नरसिंह देव दिखने में बड़े भयानक लगते हैं, है ना, भगवान भी लगते नहीं हैं। हाँ, भक्तों को लगते हैं, बाहर वालों को तो नहीं लगते हैं भगवान, लेकिन हैं ये भगवान। ये कथा एक प्रेम कथा है, लव स्टोरी, आप लोगों को अच्छी लगती है लव स्टोरी सुनना, तो आपको लव स्टोरी सुनाते हैं, भगवान और भक्त के बीच के प्रेम की कथा, कैसा प्रेम होना चाहिए और भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं उस प्रेम का, ये नरसिंह देव की कथा। वैसे लोग समझ नहीं पाते, एक समय पाश्चात्य जगत में इस्कॉन के भक्तों के ऊपर किसी ने केस कर दिया, वो बताना चाहते थे कि ये लोग ऐसे धर्म का पालन करते हैं जो सही नहीं है, ईविल धर्म है, शैतानी धर्म है, तिलक ऐसे धर्म का पालन करते हैं। तो कोर्ट केस चल रहा था, उनको कुछ प्रमाण देने थे, अब उनके पास कुछ मिल नहीं रहा था, तो कहीं से उनको नरसिंह देव की फोटो मिल गई, और जो विपक्षी लोग थे, भक्त नहीं, भक्तों को तो पता था, तो भक्त गए कोर्ट में, केस शुरू हुआ, तो इस वकील ने इतनी बड़ी फोटो नरसिंह देव की सामने प्रकट की, जज के सामने, कि और जैसे भक्तों ने देखा, भक्त तो प्रसन्न हो गए, बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता, नरसिंह देव आ गए, अब तो बच जाएंगे, अब तो रक्षा करेंगे, भगवान स्वयं आ गए कोर्ट में रक्षा करने के लिए। और उसने कहा कि देखिए माय लॉर्ड, जज को कहा कि ये लोग एक ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो ना मनुष्य है और ना जानवर है, आधा मनुष्य आधा जानवर, ऐसे ये लोग विचित्र पूजा करते हैं, और इनको हम अपने देश में कैसे रहने दे सकते हैं। अरे चलो, जानवर की करते, मनुष्य की करते, ये आधा जानवर आधा मनुष्य, ये बड़े विचित्र लोग हैं। तो देखिए, भक्तों के लिए जो नरसिंह देव प्रेम दर्शाते हैं, संरक्षण दर्शाते हैं, अभक्तों के लिए वो बड़े विचित्र हैं, उनको बड़ा अजीब लगता है कि क्या रूप बना लिया, लेकिन ये भगवान का प्रेम का रूप है। तो ऐसे नरसिंह देव की कथा फिर नारद मुनि ने प्रारंभ की, ये बताकर कि हिरण्यकश्यपु ने कैसे आतंक मचाया सारे ब्रह्मांड में। उन्होंने कहा कि हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्याक्ष भाई थे हिरण्यकश्यपु के, और हिरण्याक्ष का वध होने पर बड़े क्रोध में आ गए, ढूंढने लगे कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु, मैं मार डालूंगा उसको। और ऐसा वर्णन है कि कहीं नहीं मिले भगवान। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि लगता है मुझसे घबराकर विष्णु उस स्थान पर चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता, अर्थात मर गया, भगवान मर गए। और फिर उसने सारे ब्रह्मांड में सब जगह सब भक्ति बंद करा दी, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। आप लोगों को लगता होगा कि ये सब कथाएं हैं, कल्पना है, ऐसा कभी होता है कि कोई असुर इतना शक्तिशाली हो जाए कि भगवान की भक्ति बंद करा दे? लेकिन आपको बताएं, ऐसा हुआ था। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों के राज्य में कानूनन 10 वर्ष तक कृष्ण की भक्ति बंद कर दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि हमें बाकी किसी से डर नहीं है, ये कृष्ण के भक्त बड़े शक्तिशाली, ये छोड़ते नहीं। तो इसीलिए कानूनन कोर्ट से ऑर्डर हुआ था सारे कृष्ण मंदिर बंद कर दिए जाएं, और सारे कृष्ण मंदिर 10 साल तक बंद थे, कहीं पूजा नहीं हो सकी थी। यही कारण है आज हम लोग देखते हैं कि बाकी सबकी भक्तियां हो रही हैं, कृष्ण की कम हो रही, तो बंद कर दिया गया था। तो अगर इस समय में एक जरा सी सरकार इसको बंद करा सकती है, तो हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस क्यों नहीं बंद करा सकता। तो उन्होंने बंद करा दिया, कहीं कोई यज्ञ नहीं, कोई भक्ति नहीं, कहीं कोई छुप छुप के कर रहे हैं। सब देवता घबराने लगे, बहुत शक्तिशाली था हिरण्यकश्यपु, तो उसने सारे यज्ञ बंद करा दिए। देखिए, यज्ञों से असुरों को शक्ति नहीं मिलती, यज्ञों से भक्तों को, सुरों को, देवताओं को शक्ति मिलती है। इसलिए यज्ञ बहुत आवश्यक है, लेकिन जब यज्ञ बंद करा दिया जाता है तो भगवान जब यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं, उस समय अलग अलग समय में भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान सतयुग में तपस्या के रूप में प्रकट होते हैं, त्रेता युग में यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं, द्वापर युग में वो भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन कलयुग में वो नाम के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इस कलयुग में वो नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब यज्ञ बंद करा दिए गए, भगवान की तपस्या नहीं हो रही, तो उस समय धीरे धीरे भक्ति कम हो गई, असुरों का साम्राज्य बढ़ गया, और ऐसे समय में हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया। हिरण्यकश्यपु चाहता था और शक्ति प्राप्त करना। देखिए, तपस्या का उद्देश्य कोई भौतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। तपस्या हमें करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को पाने के लिए, और किसी कारण से तपस्या करने का कोई लाभ नहीं। और हिरण्यकश्यपु गए तपस्या करने, क्योंकि वो अमर होना चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु चला गया तपस्या करने, पीछे से इंद्र आदि देवताओं ने सोचा, उस समय हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु गर्भवती थी, संतान को जन्म देने वाली थी, तो इंद्र आदि ने सोचा कि एक ही हिरण्यकश्यपु बहुत है, ये और एक प्रकट हो जाएगा इसके गर्भ से तो पता नहीं क्या क्या करेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको ले जाते हैं कयादु को, और जब जब इसकी संतान उत्पन्न होगी हम उसको मार डालेंगे। तो वे लोग सब आए, देवता आए, कयादु अकेली थी, हिरण्यकश्यपु चले गए थे, उन्होंने घसीटा ले जाने लगे कयादु को कि तुम्हारे गर्भ में एक असुर है, जैसे ही जन्म लेगा मार डालेंगे इसे। लेकिन उसी समय नारद मुनि आ गए वहां पर। नारद मुनि ने कहा, इंद्र वो क्या कर रहे हो आप जानते हो कौन है इसके गर्भ में? तो इंद्र घबरा गए कि नहीं नहीं हमें नहीं पता, बताइए कौन, हम तो सोच रहे हैं असुर है। बोले, बहुत महान भक्त है भगवान का, इतना महान कि वो एक आदर्श बनेगा आगे आने वाले कई कई पीढ़ियों तक, लोग गुणगान करेंगे उसका, बहुत महान भक्त है। तो इंद्र ने कहा, अच्छा हमें नहीं पता था, तुरंत छोड़ दिया। उन्होंने कयादु की प्रदक्षिणा की, हालांकि अभी प्रहलाद महाराज का जन्म नहीं हुआ था, वो तो गर्भ में थे, लेकिन फिर भी प्रदक्षिणा की आदर देने के लिए। हम लोग जब परिक्रमा करते हैं किसी स्थान की, तो उसका कारण होता है, उसका एक कारण होता है कि हम आदर देते हैं। जैसे मंदिर जाते हैं तो हम प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर में भगवान के विग्रह की, या फिर हम कभी धाम में जाते हैं, जैसे आप में से कई लोग अगले हफ्ते वृंदावन जाने वाले हैं, हम सब जाने वाले हैं काफ़ी लोग, तो हम लोग परिक्रमा करेंगे वृंदावन की, गोवर्धन की। तो परिक्रमा क्यों करते हैं? एक आदर देने के लिए। या फिर कृपा की याचना करने के लिए, आचार्यों को सम्मान देने के लिए। तो यहां पर आदर देने के लिए कयादु को उन्होंने प्रदक्षिणा की, कयादु की सभी देवताओं ने, और वो चले गए। लेकिन अब जो कयादु थी उसने नारद मुनि से कहा कि ऐसे हुआ तो मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं नहीं चाहती कि ये जो बालक है अभी जन्म ले, क्योंकि अभी मेरे पति नहीं है, अगर इसने जन्म लिया तो और कोई आकर उसको मार देगा। तो इसलिए उन्होंने नारद मुनि से कहा कि मुझे एक वरदान दीजिए कि जब तक मेरे पति नहीं आए ये बच्चा जन्म नहीं ले। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, तुम्हारे पति आने के बाद ही जन्म होगा। और तो अब मेरी रक्षा अब कौन करेगा? नारद मुनि ने कहा कोई चिंता नहीं, आप मेरे आश्रम में रहो। तो नारद मुनि ने जब माँ के गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, उस समय भागवत सुनाई उनको, पूरी भागवत। और वो सुनकर प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए। तो देखिए ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है हम सब के लिए कि समाज में अगर अच्छी संतानों को उत्पन्न करना है, जो कि हमारा कर्तव्य है, हमें जो मिला है वो हम अच्छी तरह से आगे आने वाली पीढ़ी को देकर जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। और जो गृहस्थ जीवन में हैं उनका कर्तव्य है कि ऐसी संतान को उत्पन्न करें जो आगे चलकर समाज में अत्याचार न करें, उत्पात नहीं मचाए, बल्कि जो उत्पात अब समाज में हो रहा है उसको कम करने का प्रयास करें। और ये कैसे होता है? इसके लिए आवश्यक है संस्कार। जैसे माता पिता संतान उत्पत्ति के पहले गर्भाधान संस्कार करते हैं, और दूसरा जब बालक गर्भ में हो तो उस समय माता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हर रोज भगवान की कथाओं को सुने, क्योंकि बालक भी अंदर सुनता है। ऐसा नहीं है कि जब तक बालक का जन्म नहीं होता वो अचेत रहता है, उसको कोई सेंस नहीं होती है, वो कुछ सोच सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, ऐसा नहीं। ये तो साइंस भी प्रमाण देता है कि बालक माँ के गर्भ में देख सकता है, सुन सकता है। तो बालक सुनता है। प्रहलाद महाराज ने सुनी भागवत नारायण नारद मुनि से। तो इसीलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए जो गृहस्थ भक्त हैं कि जब ऐसा अवसर हो तो माताओं को निश्चित नियम से बिना चूके रोज भागवत का श्रवण करना चाहिए, ताकि उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो वो भगवान की महान भक्त हो, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की तरह ना हो। चुनाव हमारे पास है, हम चाहें तो आगे आने वाले समाज को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दे सकते हैं, और हम चाहें तो आगे आने वाले समाज को प्रहलाद दे सकते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रहलाद जैसी संतानों को उत्पन्न करें, और उसके लिए गर्भ के समय से ही कथाओं को सुनना आवश्यक है। तो कयाधु ने सुना और फिर हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या करके वापस आए, अब और शक्ति। और उन्होंने तपस्या कैसी की? बड़ी कड़ी तपस्या। ऐसा वर्णन है कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनका सारे शरीर का मांस समाप्त हो गया था, हड्डियां रह गई थी, केवल मांस नहीं था शरीर में, सब कीड़ों ने खा लिया था, फिर भी वो तपस्या कर रहे थे। और फिर जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने पूछा, उसको एक नया शरीर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? उसने कहा एक ही चीज चाहिए, मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी मरना पड़ता है, कुछ और मांगो ऐसी चीज जो मैं दे सकूं। तो हिरण्यकश्यपु ने बड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा ठीक है, मैं मनुष्य से नहीं मरूं, वानर से नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, हथियार से नहीं मरूं, किसी भी तरह से, बस नहीं मरूं, नहीं मरूं, नहीं मरूं। तो बाद में मर गया, वो अलग बात है, लेकिन उसने बहुत पूरा सब इंतजाम कर लिया कि इधर नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता, अरे कभी दिन में मरोगे या रात में मरोगे? तो उसने कहा दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मनुष्य मारेगा या प्राणी जानवर मारेगा, तो मनुष्य से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, सब सब सोच लिया उसने, अपनी बुद्धि लगा ली। असुरों की जो बुद्धि होती है वो केवल इसीलिए चलती है कि मैं कैसे इस जगत में अच्छा बना रहा हूं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, ये असुर है। तो कुछ गाने वाला असुर नहीं है, आपको असुर एक प्रवृत्ति है जो सोचते हैं कि बस यहीं बने रहना, तो यहां बने रहने के लिए मैं क्या अच्छी चीज कर सकूं। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं सोचता कि हमें ये शरीर मिला है, यहां से बाहर कैसे जा सकूं। कोई व्यक्ति जेल में आ गया है और जेल में अगर आकर सोचे कि कैसे मैं जेल को बड़ा अच्छा बना लूं, थोड़ा गार्डन लगा लूं, यहां पर थोड़े फूल उग जाएंगे, थोड़ा आराम से सो सकूंगा, अरे मूर्ख व्यक्ति, बाहर निकलने का सोचना चाहिए। जेल में गार्डन बना के, अच्छे अच्छा बेड बना के क्या लाभ है। तो इसीलिए ये सारी व्यवस्था हिरण्यकश्यपु ने कर ली कि बस मरू नहीं मैं, बाकी बस ब्रह्मा जी से कहा एक ही काम कीजिए कि मैं मरू नहीं, बाकी तो मैं देख लूंगा क्या करना है। तो खैर ब्रह्मा जी ने दे भी दिया वरदान, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, दिन में नहीं रात में नहीं, अंदर नहीं बाहर नहीं, मनुष्य से नहीं जानवर से नहीं, जो कहा दे दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी को विश्वास था मैं जो भी कहूंगा भगवान उसी तरह मार डालेंगे इसको। अब हिरण्यकश्यप वापस आया, शक्ति आ गई, ब्रह्मा जी का वरदान हो गया और अब वो वापस आया। तो वापस आकर उसने कैसा आतंक मचाया और फिर प्रह्लाद के साथ कैसे आचरण किया, इसका वर्णन अगले रविवार को करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे हम सोचते हैं कि प्रवचन के समय ज़्यादा महामंत्र बोलते रहना चाहिए, इसके कई लाभ हैं। एक लाभ है भगवान का नाम है, उच्चारण होता रहता है। दूसरा लाभ है आंखें खुली रहती हैं, बहुत अच्छा, आंखें खुली रहती। जैसे हम देख रहे थे कई भक्त जैसे हरे कृष्णा एकदम अलर्ट हो जाते, तो भगवान का नाम है ही ऐसा। किसी के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी, कोई भी संशय मन में, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, जीत गए। हाँ, वो केस रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो लोग प्रूव नहीं कर पाए कि इनकी जो वर्शिप का तरीका है वो इविल है, उसको प्रूव नहीं कर पाए वो लोग। ये कोई प्रमाण नहीं था कि फोटो लेकर आए हैं, क्योंकि उनके धर्म में भी वो लोग ऐसे कई चीज़ों को करते हैं। तो ऐसे कई केस होते रहते हैं, जहाँ पर भी भक्ति बढ़ती है ऐसे केस होते रहते हैं। एक केस और आपको सुनाते हैं, अब आपने पूछ लिया है, एक केस और। ये पोलैंड में हुआ था, पोलैंड में इस्कॉन के ऊपर केस कर दिया गया। देखिए जहाँ इस्कॉन बढ़ने लगता है ना, भगवान की भक्ति बढ़ने लगती है, तो उनको खतरा हो जाता है कि अरे ये सारे लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हमारी चर्च में कौन आएगा, चर्च खाली हो जाएगी। और वही हुआ प्रभुपाद के समय, पहले से चर्च खाली थी, प्रभुपाद ने कई चर्चेस को खरीद के मंदिर बना दिया क्योंकि चर्च खाली थी, कोई आता ही नहीं था। प्रभुपाद ने कहा हमें दो, हम मंदिर बनाएंगे, और फिर भर गए सारे मंदिर। तो उन्होंने केस किया पोलैंड में, एक नन ने केस किया, नन जानते हैं आप, जो क्रिश्चियन नन थी, तो उन्होंने केस किया कि इस धर्म को, ये इस्कॉन को पोलैंड से बाहर कर देना चाहिए। और क्या कारण दिया, ये लोग एक ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो अनैतिक है। क्यों, उसकी 16,108 रानियां थी, पत्नियां थी। ऐसे व्यक्ति की वो लोग पूजा करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें अपने देश में नहीं रखना है। वैसे उनके देश में वो लोग क्या करते हैं ये तो हम सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे देश में रहने नहीं चाहिए, केस कर दिया कि इनका भगवान ये 16,108 पत्नियां इतना विवाह करता है, मतलब वो कह रहे थे कि ये क्या कहते हैं लंपट आदमी है, ये जो इनका भगवान है ये, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो ऐसे भगवान की ये लोग पूजा करते हैं। तो केस शुरू हो गया, सब हुआ। तो पहले का जो केस एक बार जब हुआ था, पहला केस जब अंग्रेजों के समय हम लोग हार गए थे, लेकिन अब तो भक्त बड़े दक्ष हो गए, तो हमारे जो वकील थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने कहा, जब केस शुरू हुआ सब बातचीत हो गई, तो उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैं ये जो नन हैं जिन्होंने केस किया है उनको बुलाना चाहता हूँ विटनेस बॉक्स में और उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ठीक है, बुलाए। तो वो आई तो पूछिए क्या पूछना है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ पूछना नहीं है आपसे, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप जब नन बनी, नन बनना समझते हैं आप, मतलब जब वो जीवन समर्पण करती हैं जीसस के प्रति, तो आप जब नन बनते हैं तो आपको एक शपथ लेनी होती है कि आज से मैं शपथ लेती हूँ ये, और उस पर आप साइन करते हो, ये सही है? उसने कहा सही है। उसने कहा, आप वो शपथ एक बार फिर से पढ़ो, बस मेरा उतना ही, और कुछ नहीं पूछना, आप वो शपथ पढ़िए। और नन ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं पढ़ूंगी, हम लोग वो एक ही बार पढ़ते हैं वहाँ पर, फिर भी आप पढ़ के सुनाइए कोर्ट के सामने क्या है। बोले नहीं पढ़ूंगी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। उसके पास था पेपर। तो उसने कहा, माय लॉर्ड, ये शपथ हर नन लेती है, हर वो स्त्री लेती है जो अपना जीवन समर्पित करती है जीसस के प्रति। और इस शपथ में क्या लिखा है? तो उन्होंने पढ़ के बताया, इस शपथ में लिखा है कि आज से मैं जीसस को अपना पति मानती हूं। तो ये सही है कि नहीं? उन्होंने पूछा नन से, ये है कि नहीं सही? बोले सही है। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, सब जानते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि आज से मैं जीसस को अपना पति मानती हूं। और दुनिया में कितनी नन है ये बताइए? लाखों हैं। कृष्ण की तो केवल 16,108 थी, जीसस की तो लाखों हैं। फिर इमोरल कौन है, अनैतिक कौन है, जीसस या कृष्ण? तो जज ने कहा, केस डिसमिस। कोई चर्चा नहीं। तो ऐसे होते रहते हैं केस। और कोई प्रश्न किसी का, कोई जिज्ञासा? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगले रविवार तो फिर हम लोग मिलेंगे, और उसके बाद हम लोग वृंदावन जाने वाले हैं। आप में से जो लोग वृंदावन की यात्रा में साथ में जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ सूचनाएं होंगी शायद, या फिर बुधवार को हम लोग उन लोगों से मिल रहे हैं सारी सूचनाएं देने के लिए। तो जो लोग वृंदावन यात्रा में जाने वाले हैं, वो कृपया बुधवार शाम को 6 बजे निश्चित यहाँ पर आएँ, ताकि उनको उनके कार्ड्स और बहुत सारी चीज़ें जो देनी हैं यात्रा के लिए आवश्यक, वो हम उनको बता सकें। कुछ पूछें?
हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप वहाँ पर धन्यवाद भी देते हैं कि आप सभी पूरे समय निकालकर भगवान की कथा सुनने के लिए आए। आशा करते हैं आप भगवान की कथा सुनकर लाभ प्राप्त करेंगे। कल हर सोमवार की तरह हमारा क्लास है 6:30 बजे। आपका साथ नहीं है सत्य वृंदावन यात्रा जाने वालों के लिए एक संदेश है कि वेडनेसडे बुधवार को प्रभु जी के साथ मीटिंग है, छोटी सी मीटिंग है, ये शाम को 6 से 6:30 बजे तक होगी टेम्पल हॉल में। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी आए यात्रा जाने वाले, आप कुछ चर्चाएं होंगी तो कृपया आए। और मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे यानी कि सोमवार मंगलवार और बुधवार को जो भगवतन क्लास होती है सुबह, वो नहीं होगी। पुनः थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार से होगी, तो महाभारत कथा का लाभ उठाने के लिए आप लोग आएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। और आज का प्रसाद का स्पॉन्सर है श्रीमान चिदानंद प्रभु। तो चिदानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ आए और प्रभु जी से भेंट स्वीकार करें। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे राम,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसमें से किसको डालें?
चिदानंद प्रभु से श्री राम प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद कि भगवान के प्रसाद देने के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा गौरी दाई के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि जगन्नाथ प्रभु का भक्ति प्राप्त हो और भगवान का प्रेम प्राप्त हो। और अभी सभी में 5 मिनट का कीर्तन होगा, आप सबके लिए महाप्रसाद है। हरे कृष्ण।
Swami Nityananda